नमस्कार भारत, तारीख 13 अगस्त दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया।
गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेडिकल कॉलेज भेज करके उनसे इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रेटियल जांच कराने के लिए कहा है और रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है।
अमेरिका में अति दक्षिणपंथी समर्थकों की रैली का विरोध कर रहे लोगों पर चढ़ी कार। न्यूज मेकर्स में मिली है राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता नीना गुप्ता से, जिन्होंने काम मांगा सोशल मीडिया पर।
मेरे एक दो ऐसे अनुभव रहे तो लोगों में ये धारणा थी कि मैं शादी के बाद दिल्ली चली गई हूँ, तो फिर मेरे को यह ख्याल आया मैं इतनी नेट सेवी नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने कोशिश की और फिर ये इंस्टा पोस्ट डाला।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक सरकारी अस्पताल में 34 बच्चों की मौत पर विवाद होने के बाद राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित की है। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है और अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म की जांच के भी आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोरखपुर में मामले की पड़ताल कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद सरकार और कार्रवाइयां भी कर सकती है। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के शार्लेट्सविले शहर में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रांतीय गवर्नर ने गोरे नस्लवादी और नव नाजीवादी प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। गवर्नर टेरी मैकॉलिफ ने कहा है कि गोरे नस्लवादियों के लिए उनके एक ही संदेश है, अपने घर लौट जाओ। शार्लेट्सविले शहर में गोरे नस्लवादी और नव नाजीवादियों और उनके विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। हिंसा के दौरान एक कार नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 19 अन्य घायल हुए हैं। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी पक्षों की ओर से हुई कट्टरता की आलोचना की है, जबकि आलोचकों ने उनसे गोरे नस्लवादियों के खिलाफ बोलने के लिए कहा है। वहीं शार्लेट्सविले शहर के मेयर माइक सिग्नर ने कहा है कि उनके शहर में नफरत और असहिष्णुता फैलाने वाले लोगों की जगह इतिहास के कूड़े में है। कीनिया में चुनाव हारने वाले विपक्षी गठबंधन का कहना है कि वो नतीजों को खारिज करवाने के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे। विपक्ष के एक वरिष्ठ सीनेटर ने कहा है कि वो नतीजों को अदालत में चुनौती नहीं देंगे, क्योंकि जजों पर दबाव बनाया जा सकता है। निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के फिर से चुनाव जीतने के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 11 लोग मारे जा चुके हैं। उनके विपक्षी उम्मीदवार रायला ओडिंगा का कहना है कि नतीजों से छेड़छाड़ की गई है। वहीं कीनिया के गृहमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को आपराधिक तत्व कहा है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता जॉनसन मुथाना का कहना है कि पुलिस विपक्ष को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कीनिया के मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि हिंसा में 24 लोग मारे गए हैं और पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता जेम्स ओरोंगो ने बीबीसी से कहा है कि वो अदालत नहीं जाएंगे, बल्कि जनता के सामने चुनावों में धोखाधड़ी का प्रमाण रखेंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास अदालत में जाने के कई कारण हैं। चुनावों से पहले ही कीनिया के राष्ट्रपति ने एक चेतावनी दी थी, बेहद भयावह बयान दिया था। वो बयान अदालत और जजों के खिलाफ था। जिस समय वो चेतावनी दी गई थी, तब ही ये स्पष्ट हो गया था कि न्यायपालिका पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो जो भी फैसला वो लेंगे वो कार्यकारिणी के पक्ष में ही होगा। लातिन अमेरिका के कई देशों, जिनमें वेनेजुएला के आलोचक देश भी शामिल हैं, ने राष्ट्रपति ट्रंप के वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप करने के बयान की आलोचना की है। शुक्रवार को वेनेजुएला के राजदूत को निष्कासित करने वाले पेरू ने कहा है कि वेनेजुएला के राजनीतिक और सामाजिक संकट को बातचीत से ही निपटाया जाना चाहिए। मैक्सिको और कोलंबिया ने भी ऐसे ही बयान दिए हैं। ये देश उन 12 देशों के समूह में शामिल हैं जिसने वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की आलोचना की है। दक्षिण अमेरिका के व्यापारिक ब्लॉक मेरकोसर ने कहा है कि सिर्फ कूटनीति के जरिए ही लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस ब्लॉक ने पिछले साल वेनेजुएला को निष्कासित कर दिया था। वहीं वेनेजुएला ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द अपमानजनक हैं और लातिन अमेरिका में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। वेनेजुएला के विदेश मंत्री जॉर्ज अरेजा ने कहा, कल राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने हमारे देश को, हमारे लातिन अमरीकी, हमारे कैरेबियाई क्षेत्र को धमकाते हुए अपमानित किया है। ये थे जॉर्ज अरेजा के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में हुई 34 बच्चों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। समिति इस बात की पड़ताल करेगी कि बच्चों की मौत की वजह क्या ऑक्सीजन की कमी थी या फिर कुछ और। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस घटना के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार की कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को लेकर जहां राजनीति तेज है, वहीं गोरखपुर समेत कई जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र गोरखपुर में है, सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
शनिवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह जनपद गोरखपुर में दर्जनों बच्चों की हुई मौत पर हंगामा मचा हुआ था। दो दिन पहले योगी गोरखपुर में ही थे और बच्चों की मौत उसी दिन शुरू हुई, लेकिन तीन दिन के भीतर तीन दर्जन बच्चों की मौत ने सबको हिला दिया। शनिवार देर शाम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की और फिर घटना की जांच के आदेश दिए।
गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेडिकल कॉलेज भेज करके उनसे इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रेटियल जांच कराने के लिए कहा है और रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। इसकी पूरी जांच करा करके सही तथ्यों को हमारे सामने रखें। सप्लायर की भूमिका की जांच के लिए हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, क्योंकि जो सप्लायर है, ये सप्लायर 2014 में 8 वर्ष के लिए पिछली सरकार ने उन्हें दिया है।
उससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोरखपुर आए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक बार फिर उस बात को दोहराया कि बच्चों की मौत लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से नहीं हुई है।
गैस सप्लाई की कमी नहीं थी। 10:05 पे बच्चे की मौत होती है और अगली जो मौत होती है उस पे भी ध्यान दें, वो 11 तारीख के सुबह 5:30 होती है, जिसका मतलब कि जो 11:30 से 1:30 तक की गैस सिलेंडर नहीं थे, अंबू सिस्टम जो था पंप कर रहे थे, उस दौरान नहीं हुई थी।
मंत्रियों के इस दौरे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजीव मिश्र को निलंबित करने की भी घोषणा की गई, लेकिन मौत की वजह और संख्या को लेकर विवाद और अनिश्चितता जारी रही। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जिस कंपनी पर सप्लाई रोकने का आरोप है, उसका कहना है कि उसने प्राचार्य को अपने बकाया रुपयों की मांग के लिए पत्र जरूर लिखा था, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रोकने जैसा काम नहीं किया। इससे पहले शनिवार की सुबह कांग्रेस पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मिल चुका था, जिसमें गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, संजय सिंह और प्रमोद तिवारी शामिल थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इस घटना को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री योगी पर अपनी नाराजगी भी जताई। एक ओर जहां मेडिकल कॉलेज परिसर में योगी सरकार के मंत्रियों के आने से पहले लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं विश्वविद्यालय के पास कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के पुतले भी फूंके। बहरहाल शनिवार की शाम तक इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता के बाद मुख्यमंत्री भी सक्रिय हो गए। मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें खास तौर पर गोरखपुर जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा है। इस पूरे घटनाक्रम में हंगामा अस्पताल में भर्ती बच्चों की मौत की वजह से हो रहा है, लेकिन अस्पताल आने वाले किसी भी VIP ने इन मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अस्पताल के दौरे की रस्म अदायगी के साथ वापस चले गए। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
किसी भी जगह जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो व्यवस्था का सवाल तो उठता ही है। निशाने पर मशीनरी होती है, सरकार होती है, साथ ही राजनीति भी होती है। विरोधी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन से बात की।
यह इतिहास में कभी जो है मेडिकल इतिहास में ऐसी लापरवाही और सरकार के गैर जिम्मेदाराना बातें और लीपापोती, ये शर्म की बात है। ये सरकार इतनी पूरी तौर से फेल है। भाजपा सरकार केवल जो है लोगों का ध्यान हटा के बहुत ऐसे मुद्दों पे बात करती है जिनका सरकार जनता के लिए भलाई से लेना देना नहीं है।
आपके पास आपके जो कार्यकाल के दौरान क्या ये जो कंपनी है उसको भी आप लोगों ने भी ठेका दिया हुआ था ऑक्सीजन सप्लाई का, तो ये कंपनी क्या 60 लाख रुपए के लिए सरकार को कह सकती है कि हम सप्लाई नहीं करेंगे?
हम लोगों ने कभी कंपनी या ये नहीं देखा, हम लोगों ने तो ये देखा कि सप्लाई दवा हुई, पेमेंट टाइम से हुआ, बेईमानी नहीं हुई, ये रोका गया है, किससे रोका गया है? इससे सरकार जो है और पूरे तौर से इसके जिम्मेदार है, अधिकारी बेलगाम हो गए, सरकार को तुरंत जो है इस पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करना चाहिए।
इस सिस्टम में आपने चूंकि उस विभाग को संभाला है, कहां चूक रह गई होगी?
सिस्टम को तहस नहस कर दिया समाजवादी सरकार में, इस तरह की कभी लापरवाही नहीं, सरकार बिल्कुल फेल है।
60 लाख रुपए के लिए कोई कंपनी, किसी की भी कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी, वो कैसे सरकार को, सरकार के सामने खड़ी हो सकती है?
मैंने आपको बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट में तो हम लोगों ने बिल्कुल मुफ्त दवा और मुफ्त तमाम जितनी जांचें फ्री कर दी थी, कैंसर तक मुफ्त का इलाज करने की तैयारी थी। इसलिए यहाँ पैसे की जो कमी हुई है, पेमेंट की कमी, ये तो भाजपा सरकार के लिए बहुत कलंक है और शर्मनाक बात है।
ये थे अखिलेश सरकार में रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, जो कि इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के शॉर्लेट्स विले शहर में गोरी नस्लवादियों और नव नाजीवादियों व उनके विरोधियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद आपात स्थिति लागू कर दी गई है। भीड़ पर कार चढ़ा दिए जाने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पूरा ब्यौरा सुनिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के शॉर्लेट्स विले शहर में एक अति दक्षिणपंथी रैली का विरोध कर रहे लोगों पर एक कार के चढ़ जाने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले रैली निकाल रहे गोरे नस्लवादियों और उनके विरोधियों के बीच सड़कों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। शहर के मेयर का कहना है कि वो इन घटनाओं में हुई मौत से दुखी हैं। शहर के पुलिस प्रमुख के मुताबिक भीड़ पर चढ़ाई गई गाड़ी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया और ड्राइवर फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसा की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सब नफरत और विभाजन बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा,
We condemn in the strongest possible terms.
सभी पक्षों की ओर से नफरत, कट्टरता और हिंसा के इस प्रबल प्रदर्शन की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सब बहुत लंबे वक्त से हमारे देश में हो रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा के वक्त में ही नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से। इसके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया है। कार चढ़ाए जाने की घटना में घायल हुए लोगों के अलावा हिंसक झड़पों में 15 और लोग भी घायल हुए हैं। यूनाइट द राइट नाम से निकाला जा रहा है ये मार्च अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान गुलामी प्रथा के समर्थन में लड़ने वाले जनरल की मूर्ति को हटाए जाने के खिलाफ निकाला जा रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में तेज रफ्तार से आ रही कार लोगों पर चढ़ते हुए दिख रही है। एक चश्मदीद ने बताया कि कार पीछे हटी और फिर से लोगों पर चढ़ी और इसमें एक लड़की को बुरी तरह चोट आई। इस घटना से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। रैली को अवैध घोषित कर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक ओर जहां गोरे नस्लवादी समूह रैली निकाल रहे थे, वहीं नस्लवाद के खिलाफ चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़े लोग भी रैली निकाल रहे थे। गोरे नस्लवादी प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के परिसर में भी नारेबाजी करते हुए रैलियां निकाली हैं।
कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख भारत का करते हैं। 15 अगस्त के बाद मोदी सरकार तीसरी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव भी हैं, जिसके मद्देनजर इस बार कैबिनेट फेरबदल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से और पूछा कि सत्ता में 3 साल खत्म कर चुकी मोदी सरकार को अब कैबिनेट में रद्दोबदल करने की क्या जरूरत पड़ी।
इसलिए जरूरी है कि सरकार का आधा वक्त हो चुका है और इस समय 2019 चुनाव है। इनका अभी परफॉर्मेंस, इतने घोषणाएं हुई है, इतने प्रोग्राम्स हुए, इतने स्कीम्स हुई, ये कितना ग्राउंड तक असर दिख रहा है, कितना इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है और आगे वाले चुनाव में यही बड़ा मुद्दा रहेगा। बाकी तो सब अगरबत्ती है, बाकी इश्यूज वंदे मातरम हो, हिंदुत्व के इश्यूज हो और बाकी जो इश्यूज है वो तो अगरबत्ती है, लेकिन रियल इश्यूज क्या है ये सब है। उसमें क्या क्या है, जैसे स्किल डेवलपमेंट होना, नौकरियां कितने हुए हैं, जो कार्यक्रम जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, तो दूसरा ये स्मार्ट सिटी की, ये चीजें का कुछ ना कुछ विजिबल होना चाहिए दो साल में आगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा समय नहीं है। इस साल का इनके पास 4 महीना है और अगले साल का पूरा 12 महीना है। सो 16 महीना के अंदर जो भी हुआ करना है इनको, कुछ विजिबल दिखाना है। तो इनको अभी चाहिए वैसी मंत्री चाहिए जो केवल दिल्ली में नहीं बैठेंगे, थोड़ा ये चलाएंगे, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो हंटर वाला क्या चीज कहते हैं, हाँ वैसे आदमी चाहिए इनको। अच्छा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद एक प्रगति सिस्टम स्टार्ट किए, बैठकर कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, अपने सारे पीएमओ के साथ, चीफ सेक्रेटरी अलग अलग स्टेट से पूछ रहे हैं, भाई हम फलाने तारीख को ये कैबिनेट डिसीजन लिए, इसका क्या असर हुआ, उस कार्यक्रम का क्या हुआ। अच्छा, कुछ एक इन्होंने एक सेल बनाया पीएमओ में जहां हर मंत्री का क्या परफॉर्मेंस रहा है, मंत्रालय का, मंत्री से ज्यादा मंत्रालय का। तो ये सारे एक्सरसाइज जो चल रहे हैं ये केवल है कि ये समय कम है। देखिए, पीएम के सामने चैलेंज यही है क्योंकि चुनाव मुद्दा आखिरी में यही रहेगा, भाई 5 साल आपने क्या किया।
मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री थे उन्हें इस पद से गए हुए कई महीने हो गए हैं। अरुण जेटली 2 मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं। कुछ और मंत्री भी हैं जो 2-2 मंत्रालय का कार्यभार एक साथ देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि इस कैबिनेट रिशफल के बाद एक रक्षा मंत्री देश को मिलेगा?
बिल्कुल, ये तो एक मुद्दा है ही, एक इश्यू भी है, क्योंकि फाइनेंस में, फाइनेंस और डिफेंस दोनों एक व्यक्ति के पास मैनेज करना तो एक है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद और अमल होने के बाद, अब रिलेटिवली अरुण जी के पास अभी थोड़ा फ्री टाइम है, आगे इमीडिएटली करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर में कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरी बड़ी काम है, ये फाइनेंशियल ईयर भी बदलना चाह रहे हैं ना अभी, ये जो मार्च से लेकर, ये अप्रैल से लेकर जो मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जनवरी से दिसंबर कर रहे हैं, तो वो अगर करेंगे तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिव चाहिए इनको, तो उस पर क्या निर्णय ले रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर अरुण जी का जरूरत पड़ेगा फाइनेंस में।
कुल मिला के कहें तो आने वाले चुनाव में जिस तरह की भूमि तैयार करनी है उसको देखते हुए ही जो है पूरा मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जाएगा।
वही पैक रहेगा।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर विश्लेषण कर रहे थे मोदी के कैबिनेट में संभावित फेरबदल का। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले हामिद अंसारी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि देश के मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना दिखाई पड़ती है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों को दोहराया कि एक लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा दे सकती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद से बात की और पूछा, क्या वाकई में आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा असुरक्षा व असहिष्णुता का है?
कोई गलत बात तो उन्होंने नहीं कही, 100% सही कहा, जो कुछ कहा वो हकीकत बयानी है, बिल्कुल सच्चाई है। मुश्किल ये है, जैसे अरबी जबान में कहा जाता है, अल हक मुर्रन, सच कड़वा होता है, तो सच तो हमेशा ही कड़वा होता ही है। वो कड़वाहट बहुत से लोगों को हजम नहीं होती, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। वो तो बिल्कुल सही है जो उन्होंने कहा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स तो है ही है, मुस्लिम पहले भी होती थी, अब हो जाया करती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। हमारे संविधान में तो लिखा है कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, सोसाइटी कभी सेक्युलर नहीं रही। वो इतना ज्यादा धर्म का यहाँ पे डोमिनेंस, गलबा है लोगों के ऊपर, इतना हावी है धर्म, ये हमारी सोसाइटी पूरी तरह कभी भी सेक्युलर, अब तक 70 साल में आजादी से लेके अब तक सोसाइटी के अंदर सेक्युलरिज्म जो है वो अंदर तक जाके लोगों को सेक्युलर नहीं बना पाया। कुछ तबके ऐसे हैं, हर कम्युनिटी में, हर फिरके में कुछ न कुछ तबके ऐसे हैं जो इंटॉलरेंट हैं। तो इंटॉलरेंस के यहाँ अदम रवादारी, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं माफ, तो इंटॉलरेंस जो है तो पहले भी थी और अभी भी है।
तो सिर्फ एक असुरक्षा ही मुद्दा है मुस्लिमों के लिए?
नहीं, उनके जो राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, सभी को दिए हैं, वो राइट्स और माइनॉरिटीज के उन राइट्स की अगर सुरक्षा की जाए तो कुछ लोगों की डिक्शनरी में उसका नाम अपीजमेंट होता है, जबकि वो अपीजमेंट या मुंह भराई जिसको कह देते हैं ये लोग, बहुत डिटाई का लफ्ज है, वो सब कुछ नहीं है। जो ये राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं सारे, उनके रिलीजियस राइट्स भी हैं, लिंग्विस्टिक राइट्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा हुआ है कि सिटीजन्स का कोई भी तबका, छोटा बड़ा, उसकी जो भी जुबान है, जो उसकी लिपि है, जो उसकी भाषा है वो उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट रखता है, सरकार जो है वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट देगी। राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, खाली लैंग्वेज के नहीं, रिलीजन के नहीं, कल्चर के नहीं, उनको पूरी तरह से कभी भी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। डिग्रीज का फर्क है, पहले ये इतने ज्यादा खुल के उनको देना ही नहीं किया जाता था, अब किया जाता है, अब नहीं किया जाता है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी और इससे पहले जितनी गवर्नमेंट रही है उन सबकी आइडियोलॉजी में फर्क है। वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते थे, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जहाँ तक हो सके इनको खुश रखना है, इनको अकोमोडेट करना है किसी तरह। लेकिन एजुकेशनल राइट्स जो है जो बिल्कुल खुल के दिए गए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स का जो आर्टिकल है आर्टिकल 30, सिर्फ वो अनकंडीशनल है, बाकी सब में शर्त लगी हुई है। हर आर्टिकल में आप देखिए सब्जेक्ट टू हेल्थ मोरालिटी वगैरह वगैरह होता है, अनकंडीशनल है, लेकिन वो राइट्स उनको पूरी तरह से कभी भी नहीं दिए गए। ऐसा तो नहीं है कि उनकी एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो कभी सामने ही नहीं लाई गई। अब इधर कुछ सालों से यह है कि वो तो प्रॉब्लम पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं थी जितनी अब है, इसमें कोई डाउट नहीं। सच बोलने की तो इजाजत नहीं है ना, सच कड़वा होता है, सच सबको बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद, जो कि कह रहे थे कि सच कड़वा होता है। अखबार आज का कौन सा सच बयां कर रहे हैं, मौजूद हैं दिलनवाज, क्या कह रहे हैं अखबार आज के?
जी, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जिस असहिष्णुता की बात हम कर रहे थे हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति के बहाने, उसी से जुड़ी खबर है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अंसारी जहां जाना चाहते हैं चले जाएं अगर वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी पूर्व उपराष्ट्रपति से देश छोड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो गोरखपुर में घटनाक्रम हुआ है उससे जुड़ी खबरें आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान लिखता है मोदी ने मासूमों की मौत पर रिपोर्ट मांगी, वहीं दैनिक जागरण कहता है ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या 60 हुई।
हालांकि इसमें बहुत तरह के बयान आ रहे हैं
जी, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। और दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जो खबर छापी है उसमें बताया है कि जो प्रिंसिपल हैं जिन्हें निलंबित किया गया है वो अपनी पत्नी के जरिए गैस सप्लाई करने वाली कंपनी से घूस मांग रहे थे, उनके बिल,
ऐसा इनका दावा है,
ये इनके आरोप हैं प्रिंसिपल पर। आजकल हाल के दिनों में टैंक सीवर में साफ करने के लिए उतर रहे लोगों की मौत की खबरें कई बार आई हैं, और आज भी अखबार के पहले पन्ने पर दो लोगों की मौत की खबर है जो एक मॉल का टैंक साफ करने के लिए उतरे थे, जहरीली गैस से उनकी मौत हो गई और उनके पिता अस्पताल में हैं जो उनके साथ थे।
दरअसल सारे मामले इसलिए आते हैं क्योंकि वो किसी भी उपकरण का सुरक्षा उपकरण
का इस्तेमाल नहीं करते हैं भारत में ज्यादा,
और जो कंपनियां हैं वो उन्हें देती भी नहीं है।
जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर है जो आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, जदयू ने शरद यादव को राज्यसभा में नेता के पद से हटा दिया है, ये खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है वो मदरसों को लेकर के जो विवाद हुआ है उत्तर प्रदेश में, मदरसा बोर्ड के निदेशक ने कहा है कि हमने प्राइमरी स्कूल से सबूत नहीं मांगा है देशभक्ति का, क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों पर भरोसा करते हैं।
और दिलनवाज, यहीं पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि हमारे सहयोगी राजेश जोशी ने जो सीवर की सफाई करते हैं उस पर एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा था, वो bbchindi.com पर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। कार्यक्रम में अब बात करेंगे आज के न्यूज मेकर्स की।
ये है शो बीबीसी न्यूज मेकर्स, मैं आपके साथ हूँ सुमिरन, और इस बार खास मुलाकात नेशनल अवार्ड विनर नीना गुप्ता से।
हेलो, थैंक यू सो मच
नीना जी। पहले तो मैं सोशल मीडिया अकाउंट का आपका वो स्टेटस शेयर करना चाहूंगी जो आपने लिखा। आपने लिखा कि आई लिव इन मुंबई एंड वर्किंग, आई एम अ गुड एक्टर लुकिंग फॉर गुड पार्ट्स टू प्ले, ये आपने लिखा था। तो हुआ क्या कि आपको लगा कि मुझे ये चीज मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख देनी चाहिए?
मेरे एक दो ऐसे अनुभव रहे कि कुछ लोगों के पास मैं मिलने गई थी किसी काम से, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या कब आई बॉम्बे, तो मैंने कहा मैं तो यही रहती हूँ, तो लोगों में ये धारणा थी कि मैं शादी के बाद दिल्ली चली गई हूँ और मैं काम नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मेरे को यह ख्याल आया, मैं इतनी नेट सेवी नहीं हूँ पर फिर भी मैंने कोशिश की और फिर ये इंस्टा पोस्ट डाला।
इन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर हूं और अच्छे काम की तलाश में हूं।
मुझे याद है जब मैं यहाँ 30 साल पहले आई थी बॉम्बे में, तो तब तो टीवी वगैरह कुछ था नहीं, बहुत स्ट्रगल थी, और मैं हर साल दिल्ली वापस जाना चाहती थी, और फिर वापस थोड़ी देर जाके मम्मी के पास जाके वापस आके मैं फेल होती जाएगी, नहीं मिला काम, तो मैं अपने को सोच चलो फिर से लॉन्च करते हैं, मैं कर लेती थी। फिर से ट्राई करूंगी, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करूंगी।
टेलीविजन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कुछ गिनी चुनी विमेन डायरेक्टर्स हैं, एकता कपूर, अरुणा ईरानी, आशा पारेख और नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जिन्होंने सांस और पलछिन जैसे टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं। नीना, तब की टीवी इंडस्ट्री में, तब के टीवी सीरियल्स में और अब में आपको क्या क्या फर्क नजर आता है?
सारा कुछ बहुत बदल गया है, टेलीविजन बहुत बदल गया है, महंगा हो गया है एक प्रोडक्शन करना, इसलिए प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स जो हैं वो बहुत सावधानी से कुछ देती हैं आपको बनाने के लिए, क्योंकि उनका इतना पैसा लगता है कि दे के नॉट एक्सपेरिमेंट एंड टेक अ चांस। उस जमाने, हमारे जमाने में जब हमने सांस किया था और जब बुनियाद वगैरह आई थी, तो बहुत कम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मुझे लगता है अभी चैनल जो चलता है फिर उसी के हिसाब से चैनल्स बनाना चाहती है। बहुत कंटेंट की बहुत कमी है, राइटर्स की बहुत कमी है, राइटर्स की बहुत कमी है। मुझे लगता है पता नहीं क्यों राइटर्स की कमी है, क्योंकि इतना काम है, समझ नहीं आया मुझे क्यों। फिल्म की ऑफर मुझे हमेशा से कम आई है या ऐसे रोल्स आए हैं जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि वैसे भी मेरी उम्र के लिए बड़े कम रोल्स हैं और एक्ट्रेसेस बहुत हैं, सो ये रीज़न था कि मैं नहीं कर रही थी। अब मुझे नहीं ग्रैंड मदर करना, यू नो, मेरी हम उम्र के जो आदमी लोग हैं वो हीरो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड, यू नो। अगर मुझे ग्रैंड मदर ऑफर हो रहा है तो 30 ईयर्स को मदर ऑफर हो रहा है, वो भी बड़ा सैड है बेचारी। 30 ईयर में मदर नहीं होना चाहिए ना ऑफर आपको, 30 ईयर में द हीरोज आर प्राइम वेन दे आर 30, तो ये हमारी सोसाइटी ऐसी है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। अभी चेंज इतना नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज है, जैसे अभी लिपस्टिक आई है या और भी कुछ फिल्में आई हैं, थोड़ा बहुत चेंज है पर टाइम लगेगा।
न्यूज़ मेकर्स में आज आप मिल रहे थे नीना गुप्ता से, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर काम मांगने के चलते चर्चित हुई। कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल की खबरों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और श्रीलंका के बीच कल से पल्लेकल में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां भारत के कप्तान विराट कोहली ने वर्तमान सीरीज में लगातार तीसरी बार टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कल स्टंप के समय भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन था। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा 13 हैं और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर नाबाद थे। वैसे पल्लेकल में भारत और श्रीलंका पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस मैदान का स्वागत भारत की सलामी जोड़ी शिखर धवन और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 188 रन जोड़कर किया। शिखर धवन ने अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक जमाते हुए 119 रन बनाए। उन्होंने 123 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके लगाए। केएल राहुल ने 85 रन बनाए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा कल सस्ते में निपट गए। वो स्पिनर लक्षण संदाकन की गेंद पर कट करने की कोशिश में स्लिप पर खड़े एंजेलो मैथ्यूज को कैच दे बैठे। उन्होंने 8 रन बनाए। जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए तब भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 229 रन था, लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अजिंक्य रहाणे, कप्तान विराट कोहली और आर अश्विन के विकेट झटक कर मैच में वापसी की। विराट कोहली 42, अजिंक्य रहाणे 17 और आर अश्विन 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। श्रीलंका के मलिंदा पुष्प कुमारा ने 40 रन देकर 3 और लक्षण संदाकन ने 84 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उधर कल शतक जमाने के साथ ही शिखर धवन विदेशी जमीन पर 5 शतक बनाने वाले पहले खब्बू भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए। वहीं टेनिस के कोर्ट पर दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुत को 6-4, 6-4 से हराकर रॉजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनके अलावा तीसरे दौर में शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल को हराने वाले कनाडा के डेनिस शापोवालोव भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार दिलनवाज से।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक सरकारी अस्पताल में 34 बच्चों की मौत पर विवाद होने के बाद राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित की है। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के शार्लेट्सविले शहर में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रांतीय गवर्नर ने नस्लवादी और नव नाजीवादी प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया, शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।